ایڈوانس نالج نئی نئی آئی ہے، کوئی تو سناتے ہیں تو انہیں ساری باتیں نئی لگتی ہیں، ڈھیر سارے پرشن کرتے ہیں، تو بہت سے پرشنوں کا سمادھان نہیں آتا ہوگا، تو ان کو ڈائری میں نوٹ کرنا چاہیے، نوٹ کر کے پھر پوچھنا چاہیے، ایسے نہیں دے ہنمان میں آ کر کے کوئی الٹا سلٹا جواب دے دیا، کہاں کے بابا کی بات ہو رہی ہے ان کے دل میں؟ کون پوچھتا ہے، بیسک والے پوچھ رہے ہیں یا ایڈوانس والے؟ جس نے بھٹی کی ہے، تو بھٹی جب کرنے گئی تھی تو وہاں نہیں پوچھا انہوں نے، ہاں بابا نے تو یہ بولا ہے بیل پر کوئی 24 گھنٹے سواری کی جاتی ہے کیا؟ لیکن تم ہمیشہ یہی سمجھو کہ شیو بابا اس میں آتے ہیں، یہ مقرر رتھ ہے، اگر یہ بات بھول جائیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ بابا اس میں ہے، تو تمہاری بدھی ادھر ادھر چلی جائے گی، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیا سمجھو؟ کہ بابا سدیو ہی مقرر رتھ میں موجود ہے، کیونکہ بابا کو تو اور بچوں کی سیوا کرنے کے لیے بھی آنا جانا پڑتا ہے، کوئی بچہ سمجھانے والا بدھو ہے، سمجھنے والا بہت تیکھا ہے، لیکن سمجھانے والا ہمت کرتا ہے، تو ہمت کرنے والے بچے کو باپ مدد کرتے ہیں، اس میں پرویش کر کے درشتی دیتے ہیں، وائبریشن سدھارتے ہیں، اس کی واچا سے فورس بھرتے ہیں، وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے گیان سنایا، لیکن واستو میں باپ دادا بچوں میں پرویش کر کے ساری سیوا کرتے ہیں۔ بچے تمو پردھان ہے یا ستو پردھان ہے؟ تمو پردھان آتما سیوا کرتی ہے دوسروں کی، یا ستو پردھان آتما سیوا کرتی ہے؟ ستو پردھان آتما سیوا کرتی ہے، بچے تو اس سمے تمو پردھان ہے، لیکن ہمت کرتے ہیں تو باپ آ کر ان کو مدد دیتے ہیں، تو باپ کو تو اور بچوں میں بھی مدد کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، پھر بھی جیسے کوئی پرائم منسٹر ہے ودیش میں جاتا ہے، امریکہ گیا، تو امریکہ میں جانے کے بعد اس کا جو بھارت کی پردھان منتری کی کرسی ہے اس سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ کہ کنیکشن سدیو رکھتا ہے، سدیو کنیکشن رکھتا ہے، تو ایسے ہی تم کو یہ سمجھنا ہے کہ باپ سدیو مقرر رتھ میں موجود ہے، تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور
بابا جنوری میں ہم لوگ 8 9 آتمائیں بھرتی کرنے گئے تھے کمپیوٹر، تو وہاں ہمارے ہم کو جانکاری نہیں تھی، تو گیٹ سے بھرتی میں ہم مطلب باہر نکل گئے دو پل،
کمپل کی بات،
کمپل کی بات،
گیٹ سے باہر نکل گئے یا چبوترا سے نیچے آ گئے؟
نہیں نہیں، جو گیٹ بنا ہے
فرخ آباد، فرخ کے گیٹ سے باہر سڑک پہ آ گئے،
ہاں جو گیٹ بنا ہے اس کے باہر نکل گئے،
اچھا
جانکاری،
اچھا پھر کتنی دیر کے لیے؟
نہ کچھ، وہی بھائی کہا بھیا اندر آؤ، باہر نہیں جانا، تو ہم تو اندر آؤ،
کوئی خاص بات تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے گئے نا، انجان میں دیر کے لیے کافی، 2 4 گھنٹے کے لیے باہر چلے جاتے، ہاں تو کوئی نہ کوئی باہری سول کا اثر پڑ جاتا، لیکن भटकते भटकते बची गए हैं, बहुत सोते हैं। ओ तो कुंभकर्ण ने भटका लिया।
बाबा अभी जो है एक दो महीना हो गए, दो महीना से ये स्थिति हमारी कुछ चाहे जैसा था, जो हम लोग योग में जब बैठ जाते हैं तो ज्यादा करके ज्ञान में तो कम, मतलब योग में ज्यादा जो है तो हम जान नहीं पाते हैं हमारी नींद, माने आंख के समय बंद हो गई। बहुत प्रयत्न करते हैं, सब विद्यार्थी लोग भी सुनते हैं और अपने खेत भी होता है, फिर भी जो है बाबा ये चाहे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हो या कोई रोग बस हो या मतलब कोई सोल प्रवेश कर हो, ये बाबा आप इसको निदान बताइए।
तो योग में बैठना बंद कर दो, याद में बैठा करो। याद उसको किया जाता है जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है ना, जिससे प्यार नहीं होगा उसकी याद थोड़ी आएगी। प्यार होगा, सच्चा प्यार हो तो, सच्चा प्यार होगा तो उसमें नींद ही उड़ जाती है। क्या
एक घंटा अगर बैठे रहते हैं, सोते हैं,
हाँ, चलते फिरते उठते बैठते याद किया जाता है। जो हठ योगी होते हैं वो जबरदस्ती याद करते हैं। अच्छा
ये जैसे झाड़ के चित्र में मतलब आठ आत्माएं दिखाई गई हैं नीचे जड़ में, और सीढ़ी के चित्र में बाबा के साथ में मतलब चार आत्माएं हैं, चार आत्माएं हैं चित्र में,
पुराने चित्र में, नया चित्र क्यों देखना, पुराना चित्र देखना जो बाबा के सामने का समय का बनवाया हुआ उसमें।
चार आत्माएं मतलब बैठे हुए दिखाई,
दो इधर दो उधर,
मतलब एक साइड,
एक साइड क्यों, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बैठी हुई है ना, झाड़ में भी दोनों तरफ बैठी हुई है,
झाड़ में तो दोनों तरफ है, चार इधर चार उधर, लेकिन सीढ़ी वाले में एक साइड है, मतलब चार
ऊपर ऊपर
सीढ़ी का नहीं, ऊपर की बात अलग, ऊपर की बात अलग, नीचे की बात कर रहे हैं। सीढ़ी का चित्र उठा लो, चार थोड़े ही है नीचे, ध्यान नहीं दिया तुमने। हाँ, देखो
हाँ, चार आत्माएं,
हाँ
चार,
हाँ हाँ,
झाड़ के चित्र में बोल रहे हैं कि जो जड़ में बैठी है,
जो नीचे मुख्य चार धर्म है वही ऊपर देखो चार मुख्य धर्म दिखाए गए।
हाँ बाबा ऐसा कहना, ये जो सीढ़ी के चित्र में दो चार आत्माएं जो दिखाई गई हैं,
हाँ,
और झाड़ के चित्र में नीचे जड़ पर जो बैठी हैं वो आठ आत्माएं दिखाई गई हैं।
नहीं, झाड़ में तो विधर्मियों का चित्र है तो सभी विधर्मियों की बात है, और ये जो चित्र है इसमें तो भारतवासियों का चित्र है तो भारतवासी ही दिखाई जाएंगे ना, विदेशी थोड़े दिखाए जाएंगे। झाड़ के चित्र में लेफ्ट हैंड में है विदेशी और राइट हैंड में स्वदेशी, तो ये भारतवासियों का चित्र है झाड़ वो सीढ़ी, या विदेशियों का चित्र है, ये भारतवासियों का चित्र है तो आधे ही दिखाई जाएंगे ना। और
बाबा वैष्णो माता नौ देवी का पाठ बजाती है तो कौन ऐसे नौ देवियां हैं?
वैष्णो माता नौ देवियों का पार्ट बजाती है ये नहीं कह सकते, जो सरस्वती नदी है, सरस्वती ओम राधे, वो ही नौ कन्याओं में प्रवेश कर रही है इस समय। देवी एक ही है लेकिन जैसा उनका आधार होता है वैसा उनका पार्ट बजने लगता है, इसलिए कहा गया है नौ देवियां। और
तो है? मतलब जो जिसकी सर्विस करेगा तो पद पाएगा, लेकिन हम माता है जो बाहर नहीं जा सकते, सर्विस करने नहीं जाते हैं, नहीं सुनाते हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा पाठशाला में आती है तो उसकी सेवा करते हैं, उसको कोर्स कराते हैं, तो क्या हम लोग को उसका सर्विस तो मिलेगा?
और दूर नहीं मिलेगा। जो भी गीता पाठशाला में रहने वाले भांति है, बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जो ज्ञान में चलने वाले हैं, तुम तो यही समझो कि हमारे परिवार के भाती हैं। बाहर से आने वाले हैं वो तो हमारे भाती हैं, तभी तो अपने आप आए हैं, तो उनकी सेवा करना तो अच्छी बात है। जो ग्राहक बिना बुलाए आ जाए वो अच्छा, कि चिरौरी करने से और बुलाने से आए वो अच्छा है? बिन मांगे मोती मिले।
तो मतलब कोई दूसरी आत्मा उस आत्मा को लेके आती है।
हाँ?
और कहती है आप बताओ। हाँ? तो जैसे बताते हैं तो उसमें कुछ
तो जितनी सेवा करेंगे उतनी मेवा मिलेगी ना।
लेकिन बाबा हम एक आत्मा बुला के ले आती है, दूसरी आत्मा बताती है तो उसको मिलेगा कुछ के
लिए? एक आत्मा बुला के लाती है, वो संदेश लेकर के आई, संदेश दिया और संदेश लेकर के लेके आई, और दूसरी आत्मा ने उसको बैठ के पकाया। जैसे आदमी कमा के लाता है और घर में घरवाली आकर के उसको पकाती है, तो उजूरा तो दोनों को मिलता है। अर्धांगिनी कही जाती है, घरवाली क्या कही जाती है? अर्धांगिनी माने पुरुष जो कुछ कमाई करके लाता है उसमें से आधा हिस्सा किसका हो जाता है? स्त्री का हो जाता है, तो अच्छी बात है ना।
मेरा एक बात हो, ये अभी जैसे मुरली में अभी बताया गया कि पिछाड़ी में कहीं भी सुख नहीं होगा, तो लेकिन
अभी तो दुनिया में बहुतों को सुख भासता है कहीं न कहीं,
लेकिन मतलब जैसे किसी ने मुरली में कहा है कि जो अंत में याद में बैठा उन्हें मतलब दुख का अनुभव ही नहीं होगा।
याद में बैठने वालों की अलग बात है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। जो याद में है उनको इस दुनिया में कहेंगे कि अलौकिक दुनिया में चले गए, लोक में कहेंगे या आलोक में कहेंगे? वो तो अलौकिक दुनिया में चले गए, उनकी बात कहां। दुख किनको भासेगा? जिनकी बुद्धि इस दुनिया में धरी रही होगी। और
गर्मी नहीं सहन
है, तो प्रैक्टिस कब से करनी चाहिए? अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर्दी गर्मी बरसात सहन करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तो ये मकान है, अभी तो बड़े बड़े कपड़े मिल रहे हैं, कारखाने हैं, कपड़े बन रहे हैं, आगे चल के कारखाने सब बंद हो जाएंगे और जमीन हिलेगी जोर से चारों ओर, तो मकान सब टूट जाएंगे, तो सर्दी भी गिरेगी, गर्मी भी होगी और बरसात भी होगी, अकाल पड़ेगा तो ये पेड़ रूख सब सूख जाएंगे, कहीं छाया भी नहीं मिलेगी।
तो ये सोचकर तो बड़ा डर लगता है।
कहे को डर लगता है? अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। आपको तो सिर्फ डर ही लगता है, ब्रह्मा बाबा तो विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे थे। हाँ
बाबा, जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो और मुझे अपने घर में याद करो, तो शांति धाम में तो अगर याद करते हैं तो विदेशी भी धर्मी लोग याद करते हैं, तो किस घर की बात करते हैं? सुख धाम शांति धाम को याद करो।
बाप जिस तन में आते हैं उसमें शांति धाम नहीं है, है? और वो सुख धाम में नहीं जाएगा, तो बाप जिस घर में बैठे हैं चैतन्य घर में, वो हमारा सुखधाम भी है, शांति धाम भी है, वो हमारा बाप भी है। बाप को याद करो, घर को याद करो, सुखधाम को याद करो, तीनों हो गया, त्रिमूर्ति शिव है। क्या त्रिमूर्ति शिव है?
और
बाबा जब हम अमृत मिला याद कल
हो 63 जन्म में गंदा गंदा काम किया कि अच्छा ही अच्छा किया है। अब वो सूट वो रिहर्सल में रील घूम रही है तो रील में अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, जिसने ज्यादा बुरा किया होगा तो बुरा सामने आएगा, काटते चले जाओ।
अब आपने मुरली में कहा कि यानी एक परिवार से एक ज्ञान एक लोग ज्ञान में चलने लगेगा तो सारा परिवार ज्ञान में आने लगेगा,
ठीक है।
तो अभी हम ही चलते हैं और कोई नहीं आते ज्ञान में,
तो लोग परिवार तो अपने अंदर पक्का रखो कि बाबा ने हमको निमित्त बना दिया, अब हम आगे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो इन सबको पीछे पीछे हमारे आना ही पड़ेगा।
भाई लोग हमारे घर आए, उनको ज्ञान सुना है कि भगवान भारत में ही आते हैं, अरे भारत में ही आते हैं, तो हम मान ही नहीं सकते कि भगवान सकाल रूप में आएंगे, न सृष्टि में आ ही नहीं सकते भगवान, हमने कहा नहीं भारत में ही भगवान आते हैं। पृथ्वी तो गोल गोल होती है पर डूबेगी तो सारी पृथ्वी ही डूबेगी, भारत क्यों बचेगा,
कहाँ डूबेगी। हमको पता ही नहीं है कि पृथ्वी कोई गेंद थोड़े ही है जो तालाब में डूब जाएगी, पृथ्वी के चारों तरफ तीन हिस्सा जल है क्या और एक हिस्सा पृथ्वी है, तो चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा क्या, नहीं थोड़ा हिस्सा बचेगा, जो हिस्सा बचेगा वो ही जगह होगी जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊंचा दुनिया का पहाड़ कौन सा है, हैं हिमालय पहाड़। तो दुनिया में कितना भी पानी आ जाए गड्ढे गड्ढे सब भर जाएंगे और ऊंचा स्थान फिर भी बचेगा, हाँ इसलिए दक्षिण भारत डूबेगा तो डर क्यों पैदा हो रहा है, तो उत्तर भारत भी डूब जाएगा। और
हम 2 बजे योग लगावे उठते हैं, 2-3 दिन उठ पाते हैं और फिर 3-4 दिन हमारे सर में बड़ा दर्द उठने लगता है,
तो योग लगाना बंद कर दो।
जब तक अमृत
भी याद में प्यार भरा होता है और योग हठ योगियों का होता है,
जहाँ जगह करते हैं तो दर्द होने लगता है।
हाँ तो याद साकार को किया जाता है, हैं याद किया जाता है साकार को, साकार स्वतः ही याद आता है, लेकिन याद तब आएगा जब बुद्धि में ये बैठा होगा कि इस मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप आया हुआ है। अगर ये बुद्धि में नहीं बैठा है तो फिर निराकार की बिंदी की याद खींच खींच करनी पड़ेगी, फिर उसे प्यार पैदा नहीं होता है। प्यार देह के साथ किया जाता है या बिंदी के साथ किया जाता है।
बाबा जैसे संगठन में योग 1 घंटे का लगाया जाता है बैठ कर, 1 घंटा नहीं बैठ पाते तो चलते फिरते तो याद कर सकते हैं,
ठीक है। जब बच्चे को माँ याद करती है तो वहाँ बैठ के याद करती है क्या, है चक्की पीसती जाती है बच्चा याद आता रहता है, खाना बनाती जाती है बच्चे के साथ बुद्धि लगी रहती है, बच्चा बाहर खेलने चला गया
वो अच्छा लगता है।
तो कर्मयोगी कर्मयोगी तो गृहस्थी होते हैं न कि सन्यासी होते हैं, सन्यासी बैठ के याद करते हैं।
नहीं कहते अमृत वेला सुधारो तो सब कुछ सुधार जाएगा,
ठीक है।
अमृत वेला उठ नहीं पाते दर्द होते सर,
मतलब जल्दी उठ जाओगे जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे, रात में 11 बजे तक जगते रहोगे तो अमृत वेला कैसे जल्दी उठेगा। और सारा दिन याद में रहेंगे तो थकान कम होगी, थकान कम होगी तो रात में नींद कम आवेगी। और
218 में जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो 2036 तक बोला कि विनाश होगा 2036 तक, तो जो जब श्री कृष्ण होंगे तो क्या उस समय तक काफी वाइब्रेशन जो होगा क्योंकि और तमो प्रधानता बढ़ती चली जाएगी, तो उस समय क्या बहुत सी काफी विनाश होगा क्योंकि हिलती डुलती नैया दिखाई गई है वहाँ पर, क्या होगा हिलती डुलती नाव दिखाई गई कि अंधकार था बहुत पानी बरस रही बादल गरज रहे थे पानी बरसा कृष्ण का जन्म हुआ,
तो वो संगम हुई कृष्ण की बात है या सतवी कृष्ण की बात है,
संगम
लेकिन वो सत्यु के कृष्ण की बात थोड़ी है, सत्यु के कृष्ण की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है नहीं। इस समय कृष्ण की आत्मा जिस जगत माता में धरणी माता में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है वो धरणी हिलडुल रही है। वो पीपल का पत्ता दिखाया गया है नवैया, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु पैदा होने वाले कृष्ण की तो कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं। हाँ, वो तो बड़े आराम से जन्म लेगा, वहां तो कोई प्रकार का कंस का डर है ही नहीं।
तो क्या बाबा उस समय सारे कंस खत्म हो गए होंगे?
वहां की बात नहीं, वहां तो वातावरण जब अच्छा, एक सैंपल दिखाया यज्ञ के आदि में, जो आदि में हुआ सो सब अंत में होगा। तो सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में नरक में खून की नदियां बह रही थी, उस समय कराची में कोई ऐसा बंगला था जहां 300-400 बड़े आराम से पड़े हुए थे। वहां दुख का कोई वाइब्रेशन था? खून की नदियां का कोई डर था? नहीं था। तो ऐसे ही इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में कोई ऐसा स्थान सेफ हो जाएगा जहां प्रकृति के 5 तत्व कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकेंगे। और
बाबा एक मुरली में बोला हुआ है कि शंकर में शिव नहीं आते,
फिर शिव शंकर को भक्ति मार्ग में मिला के एक क्यों कर दिया गया? ये बोला गया शिव शंकर अलग अलग है, शिव की आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। बाकी ये नहीं बोला गया कि शिव शंकर है, शिव जो है वो शंकर में आते हैं। सीधे सीधे अगर बोल दें तो सबकी समझ में आ जाएगा, इसलिए सीधे सीधे मुरली में नहीं बोला है। क्या बोला है? शिव अलग है और शंकर अलग है, और भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो अंत समय की यादगार हैं या बीच की आदि की? अंत समय की यादगार है। अंतिम स्टेज में जाकर के बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई आत्मा को आप समान बनाकर चले जाते हैं। उस आत्मा के लिए बोला है शिव समान, बाप समान। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो परमधाम में रहने वाला शिव या साकार सृष्टि में कोई साकार शिव बाबा है जो सदा कायम है इस सृष्टि पर? किसकी बात है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो कौन से शिव की बात है? ज्योतिबिंदु शिव की बात है या साकार और निराकार की स्टेज के मेल की बात है? जो आत्मा निराकारी स्टेज में अपने को टिकाए लेती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज धारण कर लेती है पहले नंबर में, उसकी यादगार बन जाती है शिव की। वो सदैव इस सृष्टि पर कायम है, इसलिए कहते हैं शंकर कभी मरता भी नहीं, शंकर कभी जन्म भी नहीं लेता।
जैसे शिव शंकर को मतलब अलग बताते हैं,
अलग माने आत्मा अलग अलग,
आत्मा अलग है।
शिव की आत्मा अलग, वो परम धाम की रहने वाली, और शंकर की आत्मा अलग।
और भक्ति मार्ग में मिला,
भक्ति मार्ग में और किसी देवता को नहीं शंकर शिव के साथ मिलाया है। किसको मिलाया है? शंकर को शिव के साथ मिलाया है। तो कुछ पुरुषार्थ किया होगा ना, जितने भी देवताएं हैं उन देवताओं के बीच में सबसे जास्ती याद में बैठा हुआ किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो जो जास्ती याद करेगा तो लवलीन हो जाएगा कि नहीं? कभी तो लवलीन हो जाता है, वो लीन होना ही आत्मा सो परमात्मा कह दिया। ऐसे थोड़ी कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाता है।
ये विष्णु और नारायण भी अलग अलग है कि एक एक कहा गया?
चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियाँ, इन चारों के संस्कार मिलकर के एक होना माना विष्णु चतुर्भुज। और
कन्या किशोर अवस्था कहलाती है
किशोर हाँ, कुमार नहीं कहलाते हैं किशोर।
जो इधर है बाबा के बच्चे बन जाते वो क्या कहलाते?
युगल कहलाते हैं। वो युगल हैं, वो कन्या और कुमार हैं, वो अदर कुमार हैं, उनको कुमारी नहीं कहेंगे, कुमारी जीवन माना है, श्रेष्ठ जीवन।
कहते हैं कि जो भक्ति करे आए हैं वो बिंदी इंदी कुछ न लगा,
जो भक्ति करे आए हैं उनकी बुद्धि में बैठ गया है मैं आत्मा बिंदी, तो इतनी याद में रहो कि देखने वाला कहे कि अरे इनकी तो आत्मा दिखाई पड़ रही है। जैसे क्राइस्ट के चित्र देखा है, गुरु नानक का चित्र देखा है, महात्मा बुद्ध का चित्र देखा है, तो चेहरा देखने से ही पता चलता है इनकी आत्मा दिखाई पड़ रही है, ये आत्मा रूप में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जब आपकी आत्मा लोगों को दिखाई पड़ेगी याद में, तो फिर ये बिंदी लगाने की, आर्टिफिशियल बिंदी लगाने की दरकार रहेगी है? नहीं, ऐसी अवस्था बनानी है, कोई बाद में बनाएंगे और कोई पहले ही बना लेंगे। बिंदी सौभाग्य की निशानी होती है ना, हैं? तो जिन्होंने पहले ही बिंदी लगा ली होगी और दुनिया देखने में आए कि हाँ ये तो आत्मा दिखाई पड़ रही है, उनको देखने से ही उनकी आत्मिक स्थिति बन जाए। तो जो पहले ही आत्मिक स्थिति की बिंदी लगा लेंगे वो ज्यादा सौभाग्यशाली बनेंगे, या जिनकी आत्मा की बिंदी बाद में दिखाई पड़ेगी लोगों को वो ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे? हैं? जो पहले वाले होंगे वो ज्यादा सौभाग्यशाली बन जाएंगे, उनको बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली।
बाबा जैसे बोलते हैं कि भक्ति का अगर एक भी संस्कार रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा
अंत समय में।
भक्ति का संस्कार माना ये जो श्रृंगार होता है,
कोई ढेर सारे संस्कार, सबसे मुख्य भक्ति का संस्कार जो कहना सो करना नहीं। भक्ति मार्ग में कहते बहुत कुछ है और करते कुछ भी नहीं, तो वो भी तो भक्ति संस्कार है। ये 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 सूक्ष्म बात है और ये तो स्थूल बातें हैं।
भक्ति की तो बहुत वो है, कहते हैं उड़िया ना डारो सवेरे से लीपो ना ये ना करो वो ना, ये भक्ति है कि तो है।
हाँ हाँ, तो जिस चीज से फायदा होता है वो काम करना चाहिए, जिससे कोई फायदा ही नहीं वो काम करने से वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी है कि नहीं? फालतू एनर्जी क्यों खर्च करना चाहिए?
पार्वती और शंकर को ये साथ
बुद्धि से पार्वती जो है वो शिव के साथ रही होगी, शिव के साथ रही होगी, बुद्धि से रही होगी। कोई सरेंडर हो जाते हैं देह से तो साथ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अपने घर परिवार में धरी रहती है, तो वो साथ हुए या दूर हुए? हैं? वो तो दूर हो गए, वो थोड़ा ही शंकर पार्वती साथ हुए।
अब कहते हैं कि लास्ट में मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, तो ये बाबा कब की बात है? मतलब
तुम्हारा परीक्षा कब होगी? लास्ट में होगी। तो लास्ट में जब माया विकराल रूप धारण करेगी और परीक्षा लेगी, तो जब परीक्षा लेगी तो चारों तरफ के जो माहौल के व्यक्ति हैं दुनिया के, वो विरोधी हो जाएंगे या अवरोधी रहेंगे? और सब मिलके परीक्षा लेंगे, अंतिम फाइनल पेपर में सरकार भी विरोधी हो जाएगी, समाज के लोग भी जबरदस्त विरोधी हो जाएंगे, जो गांव परिवार के लोग हैं संबंधी हैं वो भी विरोधी हो जाएंगे, चारों तरफ से प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी, अभी अभी ढेर बरसात, अभी अभी खूब सूखा, ऐसा ऐसा, अभी अभी भूकंप, तो प्रकृति भी विकराल रूप धारण करेगी और विकारों की मार अंदर से भी होना शुरू हो जाएगी। अभी मन बुद्धि के अंदर, शरीर के अंदर विकारी वृत्तियां तंग करती है ना, उस समय और ज्यादा तेजी से तंग करेंगी। अभी तो दुनिया में जो अन्न खा रहे हैं उसमें थोड़ी खाद मिला रहे हैं, धीरे धीरे खाद का मादा बढ़ता जा रहा है। जैसे दवाइयां है ना, तो दवाइयां पहले बहुत खाते थे तब असर करती थी, अभी ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई हैं तो छोटी गोली लेकिन असर बहुत करती है। तो ऐसे ही वो खाद का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, वो खाद का भोजन हमें मिलेगा तो बुद्धि खराब करेगा, विकार बढ़ेंगे या घटेंगे, विकार और बढ़ते चले जाएंगे। तो चारों तरफ से आक्रमण होगा, तो छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे कि नहीं? बाप और बाप के जो पहले नंबर के बच्चे होंगे, आठ नंबर में आने वाले, उनका संगठन पहले तैयार होगा या बाद वाली मालाओं का संगठन पहले तैयार होगा? आठ का संगठन पहले तैयार हो जाएगा। तो जो संगठन ईश्वरीय संगठन पहले तैयार होगा वो ज्यादा सुख शांति में होगा दुनिया के अंदर कि और आत्माएं ज्यादा सुख शांति में होंगी? है पहले वाले सुख शांति का संगठन बन जाएगा, वो दुनिया में खुशबू फैलाएगा, अल्लाह का गार्डन, संसार में दूसरे धर्म वाले भी अनुभव करेंगे। तो आत्माएं कहां जाना चाहेंगी? जिनको परिचय मिला होगा वो ही जाना चाहेंगे या जिनको परिचय नहीं होगा वो जाना चाहेंगे? वो ही जाना चाहेंगे। तो वो मधुवनवासी जो वहां माउंट आबू में भी रहे पड़े हैं, उनकी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, उनके लिए बोला ताला भी नहीं लगाने देंगे, न ज्ञान सरोवर में ताला लगाने देंगे न मधुबन में ताला लगाने देंगे। जैसे वारंट निकलता है ना, तो वारंट निकलता है तो कोई आदमी ये सोचता है हम ये चीज यहाँ छुपा दें, यहाँ छुपा दें, यहाँ ताला लगा दें, वहां ताला लगा दें, अंडरग्राउंड में डाल दें, फिर तो सर पर पांव रख करके भागता है कि अभी पुलिस आई आई कि पकड़े गए, तो वो तो भागेंगे।
गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी।
तो गीता पाठशाला वाले क्या आगे आगे पीछे माहौल नहीं है? ये ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो ग्लानी की हवा ज्यादा फैलाती हैं कि तुम्हारा गायन ईश्वरीय ज्ञान सुनाएंगे, वो ग्लानी फैलाएंगे, तो ग्लानी फैलाएंगे तो संसार में ग्लानी फैलेगी। इनका गुरु जी है वो तो ये देखो कलंकी धर है इसके ऊपर, ये कलंक लग रहे हैं, अखबारों में कलंक लग रहे हैं, रेडियो में कलंक लग रहे हैं, टीवी में कलंक लग रहे हैं, तो चारों तरफ कलंक की बौछार होगी तो तुमको रहने देंगे?
नहीं।
तो क्या करेंगे, तो घर नहीं छोड़ेंगे? हाँ हाँ, तो नैया पार जाएगी इस दुख के धाम से, क्रास होकर के सुखधाम शांति धाम में नैया पहुंचेगी। शांति धाम वहां होगा जहां शांति देवा बाप बैठा होगा, सुखधाम वहां होगा जहां विजयमाला की हेड बैठी होगी। क्या है? बोल बोल।
हम लोग को निश्चय है कि जो हमारे गुरु हैं उनको ऐसे कलंक लगाए जा रहे हैं
है?
तो वो झूठे हैं सर।
हाँ, कलंक लगाने वाले झूठे हैं,
कलंक लगाने वाले झूठे
हैं है?
और तो बीके लोग जो हैं उन्हें वो भी अपने बात पर भी निश्चय है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे।
बीके वालों को,
बीके वालों को भी तो अपनी बात अड़ी जाएंगी वो अपनी बात पर अंत तक।
तो झूठे कौन है? दो में से एक तो झूठा होगा, एक सच्चा होगा। दोनों में से बीके और पीबीके, दोनों में से सच्चा कौन होगा, झूठा कौन होगा? जो सच्चा होगा वो अड़ा रहेगा और जो झूठा होगा वो हिल जाएगा। कहते सच्चे सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, सच्चाई हिलती नहीं है, सच्चाई आखिरी सर के ऊपर चढ़ करके बोलती
है। बाबा जैसे संकल्प बहुत जल्दी आए तो निकालोगी तो फिर पाप तो बन जाता होगा,
तो ज्यादा देर ठहराए रखेंगे तो पाप बनेगा।
बाबा शूटिंग तो हो जाती होगी जैसे संकल्प आया और तो शूटिंग
संकल्प आया किसी ने एक सेकंड में भगा दिया, कोई विकार का संकल्प आया और कोई ने उसको थाम के रखा भगाया नहीं और कोई ने तुरंत भगाया, तो ज्यादा खतरा किसको होगा पैदा, जो थमा के रखेगा उसको खतरा पैदा हो सकता है।
बाबा जैसे किसी को ज्ञान सुनाओ तो वो ज्यादा सवाल जवाब करने लगते हैं तो बुद्धि भटक जाती, कुछ आता ही नहीं है तो क्या करने से वो बहुत उलझा देते हैं।
तो उनसे बताओ कि अभी हम तो नए नए ज्ञान में आए हैं, छोटे बन जाओ, हम तो नए नए ज्ञान में आए अभी छोटे बच्चे हैं, हमारी जो बड़ी बहनें बड़े भाई हैं हम उनसे पूछ के बताएंगे, नहीं तो बाबा हमारे पास आते हैं उनसे पूछ के बताएंगे।
ऐसे सवाल पूछने लगते हैं कि बिल्कुल आवाज ही बंद हो जाती है कि आप इनको क्या जवाब दें, तो बाबा मुझसे ये कह दिया करें कि आप हमारे पाठशाला चलिए तो वहाँ पर सुनाएंगे।
हाँ पाठशाला में ले आओ
तो वो आते नहीं।
बाबा जैसे बोलते हैं कि आदि आदि में जो बच्चे थे राम बाप के साथ यज्ञ से जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो राम बाप जब छोड़ के गए तो बच्चे भी साथ में फॉलोअर्स चले गए, तो बाबा जैसे हम लोग जैसे हमारी पैदाइश 71 है तो इतने बीच में मतलब हमको ज्ञान क्यों नहीं मिला 71 से लेकर के अभी क्यों ज्ञान मिला, अगर हम बाप अच्छा, के साथ थे तो बीच में
71, 73, 76 में जिनको ज्ञान मिला था और सीढ़ी के चित्र में जिनको ज्ञान मिला था वो आज विरोधी बने हुए हैं, उस स्टेज में चले जाते तो इस लास्ट में आने वाले अगर फास्ट चले जाएं और विरोधी भी न बने वो ज्यादा अच्छे, या पुराने पुराने बने रहें और उत्तमो प्रधान बन जाएं वो ज्यादा अच्छे।
लेकिन बाबा कलयुग तो चार अवस्था से उसमें सारे लोग क्या उत्तमो प्रधान होंगे, चार अवस्थाओं से जब पार होगा
आखिरी सारी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, लेकिन कोई आत्मा ऐसी होती है कि गिरने की स्टेज में धीरे 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 नीचे गिरती है और कोई आत्मा ऐसी होती है द्वापर के आदि से ही एकदम पतित अवस्था में आ गई और उनमें इब्राहिम जैसी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया, उनमें बार बार ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती है और जो अंत तक धीरे 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 नीचे उतरते हैं उनमें भगवान आकर के खुद प्रवेश करता है। तो कौन से श्रेष्ठ हुए, जो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं वो श्रेष्ठ हुए।
बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में बताते हैं कि ये एक्यूरेट चित्र नहीं है लेकिन तुम बच्चों को जो है एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, तो अगर एक्यूरेट चित्र निकालते हैं तो बीच में जो वैष्णवी माता है उसका भी साकार में चित्र हमारे पास नहीं है और जो माता जगदम्बा है जिसमें ज्ञान चंद्रमा की प्रवेशता होती है जगदम्बा का पार्ट बजाती है तो वो उसका चित्र भी हमको चाहिए, तब हम त्रिमूर्ति के चित्र में एक्यूरेट करके बच्चों के सामने उसको
चाहिए चाहिए करने से हो जाएगा। ये इस दुनिया में मौजूद है, ये लोग मौजूद तो जो दुनिया में मौजूद है नापैद तो नहीं है, तो पुरुषार्थ करने वाला हो पुरुषार्थ करके खोज नहीं निकालेगा है? है? सहज हो तो सभी कर ले, फिर चित्र छपाने से प्रत्यक्षता हो जाएगी या अपने चेहरे से प्रत्यक्षता होगी है? अपने चेहरे से चलन से प्रत्यक्षता होगी, ऐसे थोड़ी कि हमने चित्र छपा के डाल दिया और जब कोई हमसे समझने आया तो हम कुछ भी नहीं समझा सके उसे। और
बाबा कभी कभी डाउन और ऊपर नीचे
63 जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए कि नहीं, अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है रिहर्सल चल रही है तो रिहर्सल में अच्छी बात भी रील में घूमेगी और बुरी बात भी रील में घूमेगी, अभी तो प्रत्यक्षता हो रही है ना 84 जन्मों की, एक्टर को अपनी एक्ट का पता चल रहा है ना कि हमने क्या एक्ट किया है, तो ये सब होना चाहिए ना।
कभी कभी खुशी आदमी खुशी खूब रहती है, कभी कभी
वही बात, अच्छे कर्म उदय होते हैं तो खुशी ज्यादा रहती है, न चाहते हुए पुरुषार्थ अच्छा होता है, और जब बुरे कर्मों की रील उदय होती है तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो भी अवस्था खराब की खराब ही बनी रहती है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हैं
हमारे पैगंबर आसम का जन्म होगा तब दुनिया का अंत होगा, तो ये बाबू कहते हैं उनका जन्म होगा उनके पैगंबर
जन्म नहीं होगा, जन्म तो उनका होता ही चला आया है, कहीं न कहीं जन्म लेते ही रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, वो तो समझते हैं कि कब्र दाखिल हो जाती है, लेकिन जहाँ कहीं भी जन्म लिए हुए होंगे वो आत्माओं को ज्ञान मिल जाएगा, ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान मिलने से वो ताकतवर आत्मा है, इसलिए जल्दी खींचेंगे, पावर खींच लेंगे ईश्वर से, जैसे कोई बैटरीज होती है ना, तो बैटरीज में कोई पावरफुल बैटरी होती है, कोई कमजोर बैटरी छोटी बैटरी होती है, तो जो बड़ी बैटरी होगी वो ज्यादा खींचेगी या छोटी बैटरी ज्यादा खींचेगी, बड़ी बैटरी जल्दी खींच लेगी, तो ऐसे ही है वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कहीं न कहीं इस दुनिया में हैं, और जब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा तो फटाक से कनेक्शन जोड़ेगा। जिनको ज्ञान मिला था वो बीज रूप आत्माएं थी, जड़ों में बैठी वाली आत्माएं थी, या ऊपर से उतरने वाले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट थे, कौन थे वो? बीज रूप आत्माएं थी, तो बीज रूप आत्माएं अलग, जड़ों पर बैठी हुई आत्माएं अलग, वो तो यज्ञ की आत्माएं हो गई, लेकिन जो ऊपर से आती है डायरेक्ट द्वापर युग में सत्य त्रेता में आती ही नहीं है, तो ज्यादा पावरफुल है,
द्वापर युग में ज्यादा पावरफुल
है, वो देवताओं को भी दबोच लेती है। भगवान अगर ना आवे तो उनसे ये देवता ही आत्माएं कभी जीत ही नहीं सकती, भगवान की ताकत मिलती है कमजोर आत्माओं को, इसलिए पावरफुल हो जाती है और उनकी जीत हो जाती है।
जैसे कहते हैं कि संकरण ज्यादा असर मतलब डालता है, तो जैसे सतयुग में और त्रेता में तो मतलब देवी देवता वाली आत्माएं होती है, तो और ये द्वापर से मतलब जो आती है आत्माएं तो मतलब कुछ आत्माएं होती है, ज्यादा नहीं होती,
कुछ क्यों आती है द्वापर युग से? ढेर की ढेर उतरती है, कुछ थोड़ा ही उतरती है, सत्य को त्रेता में जितनी नहीं उतरती उससे कई गुना ज्यादा ऊपर से उतरती जाती है, तो संकरण खराब होगा ना, ढेरों का संकरण लगता है,
तो कहने का मतलब ये कि उनके रंग में देवी देवताएं आ जाती
हैं, जो थोड़ी है जो बहुत उतरते हैं उनके संग के रंग में आ जाती है, हुजूम के संग में आ जाते हैं।
बाबा जो बीके में कुछ आत्माएं जो बहुत दिन से चल रही हैं और चल करके उन्हें बहुत काफी समय के बाद एडवांस नॉलेज मिली हुई है, और उनका जो समय शक्ति जो मेहनत किया है वो लगी है उसमें
बेसिक में
वो हाँ उसमें पहले लगी, जब फिर बाद में एडवांस नॉलेज मिली तो वो बाबा जो वहाँ मेहनत जो बच्चों ने किया है वो यहाँ उसको कुछ जुड़ेगा?
उधर जो कुछ किया है वो भगवान को पहचान के किया या भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा में किया?
नहीं बाबा, पहचान के भाव तो उनका था ही कि बाबा
भक्ति मार्ग में भाव नहीं होता है? भक्ति मार्ग में 63 जन्म भाव होता है कि नहीं?
नहीं तो ये तो भाव
एक बात बताओ,
भक्ति आया
लेकिन लेकिन बाप आया था, आया था बाप, आया था कि हमने मान लिया?
नहीं बाप आया था, ये तो मान के किया,
वो माँ आई थी कि बाप आया था? समझना है, बात अलग है, गुलजार दादी में कोई समझ ले कि भगवान आता है तो समझना बात अलग है, लेकिन
तो बात बाबा आप यहाँ की वहाँ जो है तो माँ का पाठ बजा, तब तो ये था कि माँ बाप जो है तो यही है, मतलब जो मिलता का ज्ञान वही मानते हैं।
माँ बाप एक होता है कि अलग अलग होते हैं?
अलग अलग होते हैं,
माँ अलग होती है बाप अलग होता है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ से प्यार मिलता है तो जन्म मिलता है, तो जन्म और प्यार तो मिला,
जो नॉलेज वहाँ मिली थी वो वही मिली थी, मतलब आप यहाँ मिला ये तो पता नहीं था कि बाप अभी दूसरे रंग में आएगा, ये तो नॉलेज नहीं थी बाबा वहाँ,
तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में नॉलेज नहीं थी 63 जन्म, फिर बेसिक में आए तो नॉलेज मिली, लेकिन प्राइमरी स्कूल की छोटी नॉलेज मिली, छोटे स्कूल की नॉलेज मिली या ऊंचे स्कूल की नॉलेज मिली? छोटे स्कूल की नॉलेज मिली। तो जितना ज्ञान है उतनी पहचान है, अभी जितना ज्ञान है उतनी पहचान है। पढ़ाई पूरी करेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा या पढ़ाई नीची पढ़ेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा? ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा। ऊंची पढ़ाई ऊंचा टीचर पढ़ाएगा या छोटी छोटी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं वो पढ़ाएंगे? ऊंचा ही टीचर पढ़ाएगा। ये तो सारी बातें मुरली में बताई हैं। मुरली में बताया कि तुम बच्चे जब पढ़ाई पूरी होगी तो तुम्हारा क्लास ट्रांसफर होगा। क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है। तो ये टीचर बदल गए। टीचर तुम्हारे प्रवृत्ति मार्ग के होने चाहिए या निवृत्ति मार्ग के होने चाहिए? तुम प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान प्रवृत्ति मार्ग के अर्जुन को पढ़ाने आता है या निवृत्ति मार्ग के गुरुओं को पढ़ाने आता है? तो सच्ची पढ़ाई कहाँ होती है? अभी बेसिक नॉलेज में पढ़ाने वाले सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासी है। सन्यासी उनको क्या पढ़ाएंगे? वो खुद ही सन्यासी है। घरग्रस्त में रह करके विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कैसे की जाती है साथ में रह करके, उनको क्या मालूम? वो तुम्हें कैसे सहज राज्यों की पढ़ाई पढ़ाएंगे? तो उस समय जो कुछ किया वो बेकार नहीं गया। 63 जन्म जो हमने भक्ति मार्ग में किया वो भी बेकार नहीं गया। 63 जन्म जो किया उसका उजूरा बेसिक नॉलेज में मिल गया कि हमें भगवान का माँ का रूप मिल गया। वो भी भक्ति मार्ग है। भगवान स्त्री रूप में नहीं आता, माँ के रूप में नहीं आता, ब्रह्मा के रूप में नहीं आता। ब्रह्मा के रूप में भगवान आया होता तो मंदिर बने होते ब्रह्मा के, मूर्तियां बनी होती, पूजा होती होगी। न पूजा होती है, न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं। इससे साबित होता है भगवान ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। तो वो ब्रह्मा के शासन काल में उस पढ़ाई के बीच में हमने जो कुछ भी किया हुआ तो भक्ति मार्ग, लेकिन उस भक्ति का फल हमें ये मिलता है कि सच्चा भगवान मिल जाता है। और धर्म पिताएं आते हैं तो आते हैं गाय बजा के चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के अंदर परमात्मा आया, गाय बजा के ब्रह्मा भी चला गया, भगवान भी चला गया, दुनिया नीचे गिरती गई। तो फिर भगवान साबित हुआ? भगवान आएगा तो दुनिया को बदल के जाएगा, हमको साथ लेकर के जाएगा या बीच में गुरुओं की तरह छोड़ के चला जाएगा? चेलों को साथ में लेकर जाएगा। इसलिए कहा ये अभी दो पालाएं हैं, एक रावण की पाला वो भक्ति मार्ग की ओर खींचती है, भगवान का असली परिचय नहीं देती, और एक राम की पाला है उसमें राम भगवान का असली परिचय मिलता है। जब मरते हैं तो कृष्ण नाम सत्य कहते हैं कि राम नाम सत्य कहते हैं? अंत समय में राम नाम सत्य होता है। तो अभी दुनिया का अंतिम समय अब आया है, छुपा रुस्तम भगवान अंत में खुलता है, शुरुआत में नहीं खुलता है। भगवान ही भी गुप्त और भगवान के भक्त भी जो पक्के पक्के सच्चे सच्चे बच्चे हैं वो भी गुप्त है।
कहते हैं कि देवी गुण धारण करो रूप पोता मेल में लिखो कि कौन सा देवी गुण धारण किया, तो देवी गुण कौन कौन से होते हैं?
देवी गुण सारे ही बता दिए, सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। एक धारण कर ले तो सब अपने आप धारण हो जाएंगे। एक साधे सब सदा है, सब साधे सब जाए। एक को पक्का कर लो अपने आप सब आ जाएंगे।
बाबा जब भी हम कभी याद में बैठते हैं तो हमारे योग में लगता है।
जो भी तुम याद में बैठते हो तो योग में क्यों चले जाते हैं? है तेरे की देखी।
बाबा मंदिर जो बने होते हैं तो शिवलिंग की स्थापना उसके लिए अच्छा गई है मंदिर के अंदर यादगार, लेकिन मंदिर के ऊपर जब छोटे छोटे गुम्बद और त्रिशूल दिखाया जाता उसके अंदर
यही कि तीन ज्ञान के बाण हैं, ब्रह्मा का बाण जो ब्रह्मा के द्वारा चले बाण ज्ञान के, फिर शंकर का बाण शंकर के द्वारा जो ज्ञान के बाण चले राम वाली आत्मा के द्वारा, फिर विष्णु का बाण, ये तीन प्रकार के तीन मूर्तियों के द्वारा बाण दिखाए गए हैं जो उन्होंने तीनों ने ज्ञान सुनाया है। संसार रूपी जंगल में तीन शेरों ने दहाड़ मारी है, उनकी यादगार ये तीन शेर दिखाए जाते हैं नोट में, हाँ? अशोक की लाट में जो स्टाम्प पेपर बने हुए होते हैं, हजार हजार रुपए के स्टाम्प पेपर होते हैं ना, उनमें तीन शेर दिखाते हैं, तो उनकी यादगार है।
और त्रेता के अंत में बताते हैं मुरली बोले कि राधा की दृष्टि कृष्ण में दूरती है।
त्रेता के अंत में नहीं, सत्युग के आदि में,
हाँ। कोई ऐसी आत्मा आती है कि भ्रष्टाचारी बना देती है,
द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में इब्राहिम आता है इस्लाम धर्म का, वो व्यभिचार फैलाता है, दृष्टि का करप्शन फैलाता है, उससे व्यभिचारी दुनिया बन जाती है। व्यभिचारी दुनिया माने वैश्याओं की दुनिया, तो जहाँ वैश्यालय होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, या साधु सती माताएं जहाँ जिस नगर परिवार में रहती हैं वहाँ ज्यादा झगड़े होते हैं, वैश्याओं की दुनिया में ज्यादा झगड़े होते हैं। तो एक दुनिया है वैश्यालय और एक दुनिया है शिवालय। रावण क्या फैलाता है, वैश्यालय बनाता है, सीता का हरण करके ले आता है, चोरी करके ले आए ना, जो भी व्यभिचारी होते हैं वो चोरी करके व्यभिचार करते हैं कि खुलेआम करते हैं, चोरी करके करते हैं, उनको रावण कहा जाता है।
क्या बाबा एक शरीर में कितनी सोलह प्रवेश कर सकती
है? बहुत सोलह प्रवेश कर सकती है।
सभी साथ ये इकट्ठा बोलेंगे कि अलग अलग
है?
सभी इकट्ठा बात करेंगे, मतलब जब प्रवेश करेंगे
बात तो एक अंग से एक ही करेगा एक टाइम पर, लेकिन उसमें जो पावरफुल होगा वो इंटरफियर करके करेगा। जैसे मुरली में बाबा बोलते हैं ये ब्रह्मा भी बीच बीच में इंटरफियर करके बोलता है, शिव बाबा जब बोलते हैं तो ब्रह्मा की सोल भी बीच बीच में बोलती है इंटरफियर करके।
बाबा जैसे बोला है कि माया बेटी जो है, जो माया बेटी है तो बाप उनसे कहते हैं लगा इस पे भूसा, तो महावीर अच्छे अच्छे महारथियों को जो है जो 25-25 साल से चल रहे हैं उन महारथियों को माया बेटी गिराएगी। तो जैसे अभी कहा जाता है कि माया बेटी जो आज है वो जैसे सारा जाता है इस्लाम धर्म की जो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, और वो जब अगर शरीर छोड़ के जाती है तो क्या वो महारथियों में प्रवेश करके उसको ऐसा मतलब गिराएगी वो, क्या मतलब
क्यों नहीं गिराएगी, और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी फिर तो, जो सूक्ष्म शरीर उसको मिल जाएगा, अभी तो देह के स्थूल देह के बंधन में बंधी हुई है, और जो सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा तो और ज्यादा पावरफुल होगी कि कम होगी? याद में रहो,
याद में रहने से बाबा चाहे जैसी आत्मा हो
जब बीज रूप स्टेज रहेगी, तो जैसे राम वाली आत्मा की बीज रूप स्टेज है जिनको शंकर कहा जाता है भूतनाथ कहा जाता है, तो आत्मिक स्थिति में रहने के कारण ही तो भूतों का असर नहीं होता है, भूत होते हैं सूक्ष्म शरीर वाले, और राम वाली आत्मा है बिंदु, तो कौन सी ज्यादा पावरफुल है? जो बिंदु रूप है उसमें ज्यादा पावर है, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जब तक नजदीक आते आते हो उसका सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो जाता है, वो बिंदु बन जाती है, भले प्रवेश करती है लेकिन फिर भी पढ़ाई पढ़ती है बैठ करके। राम की आत्मा को पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकती, क्या पढ़ेगी? पढ़ाएगी नहीं।
बाबा जो बेसिक नॉलेज हमको मिली तो उसमें बहन जी से हम यही कहा करते थे कि हमको जो है एक बिंदु को याद, मतलब बिंदु ज्यादा याद आता है हमको याद करने पर, और ये ब्रह्मा का फोटो बिल्कुल ही याद नहीं आता।
यही तो मुरली में कहा है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को फोटो भी नहीं रखना है, फोटो भी रखेंगे तो पतित वन पड़ेंगे।
ब्रह्मा नहीं बेसिक में जब चलते थे तो कभी ब्रह्मा को नहीं देखा, भगवान की जब से चलते हैं ब्रह्मा बराबर दिखाई पड़ते हैं, पढ़ाते हुए उनसे बातें करते हुए और कहते बच्ची योग लगाओ बच्ची ऐसे ऐसे दिखते हैं
तो तुमको पटाए रहे तो हमारी तरफ आ जाओ। है क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी विनाश से बहुत डर लगता था और आपको भी विनाश से बहुत डर लग रहा है। बना लिए नहीं, कोशिश कर रहे हैं
बाबा। जैसे पांच विकारों के लिए बोला, काम धर्म की आत्मा वो कामी आत्मा है और जो क्राइस्ट धर्म की आत्मा है वो क्रोधी आत्मा है।
तो एटम बम किसने बनाए?
जो अपने अंदर स्वभाव
से एटम बम किसने बनाए?
क्रोधियों
ने एटम बम बनाए। और दुनिया में विचार किसने फैलाया?
इस्लाम धर्म।
तो विचार ज्यादा कामी होते हैं वो विचार फैलाते हैं, या जो दूसरे विकार होते हैं वो ज्यादा व्यभिचार फैलाते हैं?
बाबा जिनके अंदर ये स्वभाव संस्कार ज्ञान में आने के बाद प्रत्यक्ष होते हैं तो क्या उनका ये पार्ट रहा है? जैसे मान लीजिए कोई कामी है
तो 63 जन्म रहा होगा तभी तो वो ज्यादा अटैक कर रहा है।
तो जो आज एडवांस में नॉलेज दिए हैं, एडवांस में पार्ट बजा रहा है, तो क्या वो कन्वर्ट हुई आत्मा है या मतलब
कन्वर्ट नहीं होंगी तो उस धर्म में जाके जन्म लिया होगा।
बाबा विनाश के समय लास्ट में कहते हैं एक ही ट्रेन बचेगी और बाबा
विनाश के समय नहीं बताया। जैसे 1947 में हिंदू मुसलमानों के बीच में खून की नदियां बही थी तो एक ही ट्रेन चली थी, उस पहली ट्रेन में जो बैठ गया सो बैठ गया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाते समय या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते समय। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चली उसमें मार काट हो गई,
दूसरी ट्रेन
लाशें की लाशें मरी हुई डाली गई। ऐसे ही अंत में वो तो छोटा रूप हुआ और अभी तो बड़ा रूप होगा। तो इसलिए जिनकी बुद्धि में बैठा होगा वो तो फटाक से निश्चय बुद्धि विजयते नष्टो मोह स्मृति लब्धा होकर के फटाक से बैग एंड बैगेज अपना इकट्ठा करेंगे भाग खड़े होंगे। और जिनका लगाव लगा हुआ है वो चिपक के रह जाएंगे। हम अभी से ही दे दे रहे हैं, जेल में जाए। लेकिन बाबा ने कहा मांगने वाले भिखमंगों को नहीं देता हूँ। मांगने वाले भगत होते हैं। हाँ तो बच्चे बने ना पुरुषार्थ करें। हाँ मांगने की क्या बात है, बाप तो रास्ता बताते हैं। ऐसे मांगने से देते तो सारी दुनिया को ले 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 लो, सब लक्ष्मी नारायण बन जाओ।
बाप तो बहुत वैसे ही देता ही रहता, देता ही रहता।
हाँ तो वो दुनिया भी बाप थोड़े ही है।
तो बाबा हम लोग से मांगेंगे नहीं, आप अपने आप देते जाइएगा।
तो बाप तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो लो, है अच्छा कर्म करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छी याद करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छी सेवा करो, अच्छे से अच्छा ले लो, अच्छे से अच्छे गुण धारण करो, अच्छे से अच्छे देवता बन जाओ।
बाबा इधर जैसे बहुत से गांव हैं और जिन गांवों में सेवा कर रहे हैं वो बेसिक में नहीं है, तो क्योंकि बेसिक वालों को बताते हैं तो उनको एडवांस जल्दी टच करता है, लेकिन जो नए हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए उसमें मेहनत लगती है, तो क्या हमको वहां गांव-गांव उनको भी जाकर के ये
जो हमारे कुल के होंगे वो अपने आप आकर के यहाँ सेवा ले लेंगे? नहीं, बाकी जो वंचित हुई आत्माएं हैं ईश्वर के बने थे, छह माँ के रूप में बने तो वंचित हो गए, उनको संदेश देना पहला फर्ज है।
जिनको बाबा हम गांव गांव संदेश दे रहे हैं उनको ज्ञान का बीज पड़ गया,
जो पड़ गया उनको दो।
बाबा इसमें ये बोला है कि लास्ट में जो है आधे पाप आत्मा बचेंगे आधे पुण्य आत्मा बचेंगे, तो जो पुण्य आत्मा होंगे वो आबू में जो है माउंट आबू में जा करके तपस्या करेंगे और जो पुण्य आत्मा होंगे उनका संगठन अलग होगा।
ठीक है।
जब माउंट आबू में तपस्या करेंगे तो हम लोग क्या जा सकते हैं अभी से माउंट आबू जाके बना के
जाएंगे? कौन जिन्होंने दूसरों का कल्याण किया होगा वो ज्यादा वो पुण्यात्मा होंगे कि जिन्होंने कल्याण ही नहीं किया होगा वो पुण्यात्मा होंगे? हैं? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, जिनकी चढ़ती कला होगी वही तो पुण्यात्मा हुए हैं, वो दूसरों का भला करने में लगी रहेंगे।
कहना
अपनी उनको जो थोड़ी चिंता
जाके रहने लगे
फिर यहाँ सेवा कौन करेगा?
जब जाके रहने लगे तो
आप अभी समझे कि हम जो है पाप आत्मा की लिस्ट में आएंगे, अगर पुरुषार्थ करते हैं तो पुण्यात्मा में भी जाएंगे।
जो पुण्य आत्माएं होंगे उनको निगेटिव संकल्प चलेंगे या पॉजिटिव चलेंगे? फिर और
बाबा जैसे कहते हैं कि कदम कदम पर श्री मतलब का कोई काम करना चाहिए और कहीं भी अगर हम सेवा करने जाते हैं तो उस समय बाबा का फोन बिजी रहता है, फोन नंबर नहीं होता है, दीदियों से बहनों से बात करना पड़ता है, बात कभी मतलब बड़ा बिजी होने के बाद बाबा से बात हो सकती है, तो जहाँ जाना है श्री मत लेना है तो बाबा कैसे सरल होगा कि हम बाबा से तुरंत बात करें और तुरंत निकल पड़े रात में ही? ऐसा
जिसको चाह होती है वो राह निकाल लेता है, क्या जिसको काम निकालना होगा वो तो पीछे पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? वो तो पीछे पड़ जाएगा, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, चौथी बार कहेगा हमारा बहुत नुकसान हुआ जा रहा है, अगर आपके ऊपर बहुत पाप चढ़ेगा, अगर हमारा नुकसान हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 20 बातें करके एक कनेक्शन जोड़ लेगा।
कहीं बाप नाराज ना हो जाए इसलिए
बाबा का तो धंधा ही है सुबह शाम तक बातें बनाने का। है चलो टाइम भी
पूछा था लखनऊ में उनको कि बाबा ऊपर गए हैं, जैसे काफी बाबा के बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर बैठने को नहीं होती है तो ऊपर हाल बनवाना चाहते थे तो बाबा ने मना किया कि नहीं घास फूस का जो बनाना है उसको बना ले।
कहाँ? हाँ ठीक है, बड़ा झोपड़ा डाल दिया जाए क्या हर जाए? अभी ये कमरा भर गया तो आगे चल के तो और गैदरिंग बढ़ेगी ना, तो छत अगर चौरस है तो उसमें एक बड़ा झोपड़ा डाल दिया, सब आके इकट्ठे होके बैठ गए। हैं? ईंट की दीवार? हाँ मालूम है ये सब मिट्टी में मिल जाएगा तो काहे के लिए पैसा इसमें जाए, पेट में जाने दो पैसा। हैं? हैं? हाँ तो काहे के लिए मिट्टी में पैसा?
बाबा
की
कार में बाबा
उस
पैसे को
बनवा
दो,
बाबा
की कार में
इतना
दिन बढ़ेगी
तो हीरे का महल बनवाओ ना। बाबा ही काम में तो आएगा। हाँ बाबा हंसी उड़ाते
हैं। बाबा फोन किए और इतनी
सुनी
लिया मैं समझ ना पाई। बाबा
बाबा
इसी ने था पहले। अच्छा
बाबा कहते हैं कि जैसे घर के पैसा जेल से चुराओ ये पाप पड़ता, लेकिन पार्वती जी ने भी तो गृहस्थी में हर चीज चुरा चुरा कर रखी।
जो चुरा
चुरा
पार्वती ने जो गृहस्थी में चीज चुरा चुरा के रखी थी और ये बात शास्त्रों में लिखी गई है, वो शास्त्र विकारी मनुष्यों ने लिखे या भगवान ने लिखे? तो झूठी बातें लिखी ना।
चलानी पड़ता है
क्या
कि नहीं है पैसा देना तो निकालना पड़ता है, दूसरा काम चलाना पड़ता है।
हाँ।
तो ये पाप पड़ता है।
वो बैठोगी कि जल्दी
निकालेंगे। ये पाप है बाबा।
अगर भक्ति मार्ग की तरह चलो तो कोई पाप नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो कहा कि पार्वती ने भी निकाल लिया। दूसरी बात, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि स्त्री अर्धांगिनी होती है, आधे के ऊपर हक होता है, तो आधा जो कमाया उसमें से आधा अगर उसने अपना ले लिया तो उसमें पूछने की भी आदर कर ले लिया। लेकिन अगर ज्ञान में चल रहे हैं तो ज्ञान में जितना सच्चा फाउंडेशन डालेंगे उतने सचखंड के मालिक बनेंगे। बाप के बच्चे तो गरीब, बाप
सच्चाई से लेते अब वैसे नहीं लेते,
सच्चाई तो कह के लो,
वो नहीं देंगे
सर, नहीं देंगे तो मत दो, हमें तो देने वाला आ चुका।
अपने आप जैसे बाबा कहीं दान करना, बाबा को कहीं कुछ करना, कहीं
अरे हमारी जेब में पैसे हैं तभी तो हम दान देंगे, या दूसरों से वो वाल्मीकि की तरह डकैती डाल के लेंगे। बाबा बाबा आ चुका, बाबा का घर बन गया सुखाई के लिए।
बाबा ये भी कहते कि जितना आप दान कर लो तो वो तुम्हारे आगे सतयुग में काम।
तो चोरी करके दान करोगे क्या?
बाबा नहीं मिलती तो क्या,
तो बाबा बिल्कुल न करेंगे, ऐसे चोरी नहीं करेंगे तो बिल्कुल न दान होगा।
तो ज्ञान का दान करो ना, कौड़ियों का दान करना ज्यादा अच्छा या ज्ञान का दान करना ज्यादा अच्छा? तो फिर ज्ञान 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 रतन शिव बाबा भगवान देता है, अब ये रुपए पैसे का कौड़ियों का जो कमाई है वो तो घर वाले करते हैं, तो ज्यादा भाग्य किसमें बनेगा? तन से करो, ये देखो ये बढ़िया गुरु बनता है, है?
नहीं निकाले, हम नहीं करें।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो जो शिक्षा देने वाले थे उनको तो अब तुमने समझ लिया कि वो बाबा के बच्चे चाहते हैं या बाबा का धन, बाबा के बच्चों का धन चाहते हैं? भंडारी जो रखी जाती है वो भंडारी क्या बताती है, कि भगवान के मत पे चल रहे हैं या अपनी मत पे चल रहे हैं? भगवान ने तो कहा नहीं भीख मांगो, चाहे भंडारी रख दो चाहे सिल्वर का कटोरा लटका दो। जो भिखमंगे होते हैं वो सिल्वर का कटोरा रखते हैं।
मुरली में भी निकाला जाता था कि भंडारी में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़।
मुरली में जो निकाला जाता है वो मनुष्यों ने लिख करके निकाला या भगवान ने मुरली में बोला था ब्रह्मा की मुख से?
मनुष्यों ने लिखा।
क्या
काशीनगरी में ही रह रहे होंगे? काशी माने काश्य, काश्य माने तेज, याद का, जहाँ याद का ज्यादा तेज होगा उन्हीं के बीच में रहते होंगे।
बाबा जी हम एक बजे पाई था जग मानी, चार बजे उम्र पाई था, चार बजे
जग पाते, एक बजे नहीं जग पाते,
एक बजे नहीं
के रात के 12 बजे सोओगे तो कैसे 4 बजे 1 बजे जग जाओगे?
कल 10 बजे तो
है, 10 आएगी बाबा जी, 8-9 बजे सो जाओ, 8-9 बजे सो जाओ तो सुबह जल्दी आप हो जाएंगे।
कल बाबा सफाई की गई थी, पूरे गई थी, मैं सो गई थी, आपने रोज मेरी नींद नहीं खुला करती, रोज 7-7, 8-8 बजे तक उठा करती थी, कल अभी क्या हुआ अपने आप नींद खुल गई।
कल बाबा पता लग गया ना कि बाबा आने का,
7 बजे क्लास खत्म हो जाए।
आप तो 3 बजे पहले नहा लेना।
अच्छा 3 बजे तो ऐसे ही रोज समझा करो, बाबा आ रहे, बाबा
जल्दी जल्दी, नहीं जब मैं तो नहा रही थी।